नमस्कार, आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण स्रोत पर चर्चा कर रहे हैं। यह है पूज्य गुरुदेव युग ऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य द्वारा रचित पुस्तक शिक्षा ही नहीं विद्या भी
जी।
और ये पुस्तक 1988 से 1990 के बीच लिखी गई क्रांति धर्मी साहित्य पुस्तक माला का एक बहुत अहम हिस्सा है।
बिल्कुल, और इस साहित्य का महत्व तो पूज्य गुरुदेव ने स्वयं बताया था। उन्होंने वंदनीय माताजी से वसंत पंचमी 1990 को कहा था कि मेरा ज्ञान शरीर ही जीवित रहेगा।
हाँ, ये बात बहुत मार्मिक है।
और उन्होंने ये भी कहा कि हम सब का, उनके बच्चों का कर्तव्य है कि इस ज्ञान शरीर को, मतलब इस क्रांति धर्मी साहित्य को जन जन तक पहुँचाएं।
सही कहा। तो ये चर्चा खास तौर पर उन श्रोताओं के लिए है जो समाज और व्यक्ति के गहरे रूपांतरण में, उसके दर्शन और प्रक्रिया में रुचि रखते हैं।
बिल्कुल, और इस पुस्तक का जो केंद्रीय तत्व है वो सिर्फ साक्षरता या जानकारी पाना नहीं है, जिसे हम आमतौर पर शिक्षा कह देते हैं। पूज्य गुरुदेव यहाँ विद्या के महत्व पर बहुत बल देते हैं।
विद्या यानी
चरित्र का निर्माण, मानवीय संवेदनाओं का विकास, और जो ज्ञान मिला है उसका जीवन में व्यावहारिक उपयोग।
असल में यही विद्या व्यक्ति और समाज दोनों के असली उत्थान के लिए जरूरी है।
तो चलिए इस विचार की जड़ तक चलते हैं। पूज्य गुरुदेव के अनुसार आज हम जिन अनगिनत मुश्किलों और समस्याओं से घिरे हैं उनकी असल जड़ कहाँ है?
देखिए, पूज्य गुरुदेव बहुत साफ कहते हैं कि इन सब का मूल कारण है मनुष्य की अदूरदर्शिता और उसकी संकीर्ण स्वार्थपरता।
अदूरदर्शिता मतलब दूर की न सोचना।
हाँ, बस तात्कालिक लाभ पर नजर रखना, सोच का दायरा बस मैं और मेरा तक सिमट जाना, और दूसरों के प्रति, समाज के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है उसका एहसास ही ना होना।
इसके लिए उन्होंने एक बड़ा सटीक शब्द इस्तेमाल किया है, इक्कड़ प्रवृत्ति।
हाँ, इक्कड़ प्रवृत्ति, जैसे कोई उदंड जानवर अपने झुंड से बिछड़कर आक्रामक हो जाता है ना,
और किसी पर भी हमला कर देता है। वैसी ही प्रवृत्ति जब इंसान में आ जाती है तो वो समाज के लिए घातक बन जाती है। पूज्य गुरुदेव के अनुसार यही प्रवृत्ति समाज में दिखने वाले छल, कपट, अपराध और जितने भी अनर्थ हैं उन सबको जन्म देती है।
इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ जानकारी हासिल कर लेना या डिग्री ले लेना, जिसे हम शिक्षा कहते हैं, वो इस समस्या का हल नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं।
ये तो बल्कि व्यक्ति को और कुशल स्वार्थी भी बना सकती है।
निश्चित रूप से, इसीलिए तो पूज्य गुरुदेव विद्या की जरूरत पर इतना जोर देते हैं। विद्या वो है जिसमें मानवीय गरिमा की समझ हो, उत्कृष्टता और आदर्श के प्रति एक निष्ठा हो और दूर तक देखने वाली विवेकशीलता हो।
अच्छा,
ये विद्या व्यक्ति के गुण, कर्म और स्वभाव, मतलब उसकी पूरी प्रकृति में एक सकारात्मक बदलाव लाती है, और यही बदलाव असल में युग परिवर्तन का आधार बन सकता है।
ये तो बहुत बड़ा लक्ष्य है, व्यक्ति के स्वभाव को ही बदल देना। तो फिर इस बदलाव को लाने वाले लोग कौन होंगे? पूज्य गुरुदेव ने सृजन विद्या के प्राध्यापक की एक संकल्पना दी है, ये कौन लोग हैं?
हाँ, सृजन विद्या के प्राध्यापक, ये वो लोग हैं जिनका अपना चरित्र अनुकरणीय हो, जिनमें गहरी भाव संवेदना हो। जरूरी नहीं कि उनके पास बहुत ऊंची औपचारिक शिक्षा या डिग्रियां हों, पर उनका व्यक्तित्व ऐसा हो चुंबकीय कि वो अपने आचरण से, अपने जीवन जीने के ढंग से दूसरों को प्रेरित कर सकें।
और उनके गुण क्या होंगे?
पूज्य गुरुदेव ने दो अनिवार्य गुण बताए हैं। पहला है संयम।
संयम,
हाँ, यानी अपनी निजी इच्छाओं, जरूरतों और महत्वाकांक्षाओं को सीमित रखना। और दूसरा है सेवा।
सेवा
जी,
किस रूप में?
यानी इस विद्या के विस्तार के लिए, समाज के उत्थान के लिए बहुत पुरुषार्थ करना, समर्पित भाव से काम करना।
ये बहुत दिलचस्प है कि कैसे चरित्रवान व्यक्ति ही परिवर्तन के केंद्र में होंगे, पर ये प्राध्यापक इस विद्या का, इस चेतना का प्रसार करेंगे कैसे? क्या इसके लिए भी कोई व्यवहारिक तरीका बताया गया है?
हाँ हाँ, बिल्कुल। पूज्य गुरुदेव ने बहुत ही व्यवहारिक और जमीन से जुड़े तरीके बताए।
जी,
जैसे स्वाध्याय को बढ़ावा देना, इसके लिए सस्ता, आसानी से मिलने वाला युग साहित्य उपलब्ध कराना।
अच्छा,
झोला पुस्तकालय की कल्पना दी, मतलब स्वयं सेवक घर घर जाकर पुस्तकें दें और फिर वापस ले आए। कितना सरल और प्रभावी तरीका।
हाँ, ये तो बहुत अच्छा विचार है।
फिर सत्संग का महत्व बताया, साप्ताहिक या पाक्षिक बैठकें हों जहां सब मिलकर भजन कीर्तन करें, साहित्य पढ़ें, विचारों का आदान प्रदान हो, दीप यज्ञ जैसे छोटे आयोजन हों। यहां तक कि उस समय जो तकनीक उपलब्ध थी, जैसे ऑडियो वीडियो टेप, उनका उपयोग करने का भी सुझाव दिया था।
और कुछ नए प्रयोग भी थे शायद, मुझे ज्ञान रथ याद आ रहा है।
बिल्कुल, ज्ञान रथ, क्या कल्पना थी! एक साइकिल रिक्शा या ठेले पर बैटरी, टेप रिकॉर्डर और लाउडस्पीकर लगा दो,
अच्छा,
और उसे गली मोहल्लों में घुमाओ ताकि अच्छे विचारों का संदेश आसानी से लोगों तक पहुंचे।
वाह।
इसके अलावा साइकिल यात्राएं निकालना, सार्वजनिक जगहों पर दीवारों पर अच्छे वाक्य लिखना, प्रेरणा देने वाले स्टिकर चिपकाना, ये सब चेतना विस्तार के सहज तरीके बताए गए।
और साथ ही बाहरी प्रयासों के साथ साथ अंदर की साधना पर भी उतना ही बल दिया।
आंतरिक साधना,
जैसे
सूक्ष्म शरीर की शुद्धि और शक्ति के लिए गायत्री मंत्र का जप कम से कम 108 बार रोज, और कारण शरीर के परिष्कार के लिए सुबह के उगते सूर्य का ध्यान।
सूर्य का ध्यान?
हाँ, जिसमें ओजस, तेजस, वर्चस्व धारण करने का भाव हो। मतलब बाहरी काम के साथ अंदर की शक्ति भी बढ़ानी है।
व्यक्तिगत साधना और प्रयासों के साथ साथ मुझे लगता है पूज्य गुरुदेव ने सामूहिक शक्ति पर भी बहुत ज्यादा जोर दिया है।
निश्चित रूप से, उन्होंने 24 लाख परिजनों से रोज कम से कम 2 घंटे समयदान का आह्वान किया था।
2 घंटे रोज, 24 लाख लोग।
हाँ, और अपनी कमाई में से कम 20 पैसे अंश दान का। सोचिए, 24 लाख लोग रोज 2 घंटे दें तो प्रतिदिन 48 लाख घंटे का संगठित श्रमदान।
ये तो बहुत बड़ी शक्ति बन सकती है।
बिल्कुल। इसी तरह प्रतिदिन 24 करोड़ गायत्री मंत्र जप का एक सामूहिक आध्यात्मिक अनुष्ठान का लक्ष्य भी रखा गया था। संगठन और साधना दोनों साथ साथ।
और भविष्य के लिए भी एक स्पष्ट योजना थी, है ना?
हाँ, 1990 से लेकर सन 2000 तक की जो 10 साल थे उन्हें विशेष महत्वपूर्ण माना गया था। लक्ष्य था कि इन 10 सालों में कम से कम 10 लाख ऐसे योग शिल्पी तैयार किए जाएं जो खुद प्रशिक्षित हों और हर एक अपने जैसे 10 और व्यक्तियों को तैयार करें।
10 लाख से 1 करोड़?
हाँ, इस तरह 1 करोड़ समर्पित निष्ठावान व्यक्तियों का एक विशाल संगठन खड़ा करने की योजना थी। और इसी क्रम में 1995 और फिर सन 2000 में विराट अश्वमेध यज्ञों के माध्यम से पूर्णाहुतियों की योजना थी। इन्हें नए युग, सत्युग की वापसी का उद्घोष माना गया था।
अच्छा,
अगर हम संक्षेप में देखें तो पूज्य गुरुदेव का ये पूरा काम और ये पुस्तक शिक्षा ही नहीं, विद्या भी। ये सिर्फ साक्षरता या जानकारी बढ़ाने का अभियान नहीं है, ये विद्या के पुनर्जागरण का, चरित्र निर्माण का, मानवीय मूल्यों को फिर से स्थापित करने का एक बहुत शक्तिशाली आवाहन है। ये संयम, सेवा और संगठित सामूहिक प्रयास के जरिए व्यक्ति और समाज में जड़ से बदलाव लाने का एक दर्शन भी है और एक व्यवहारिक रास्ता भी, ताकि सतयुगी परिस्थितियां फिर से लौट सकें।
ये गहन चर्चा हमें यकीनन सोचने पर मजबूर करती है। आज के इस जटिल, तेजी से बदलते तकनीकी युग में विद्या यानी चरित्र, संवेदना और विवेक पर आधारित ज्ञान की क्या प्रासंगिकता बची है, और क्या दशकों पहले पूज्य गुरुदेव द्वारा सुझाए गए ये सिद्धांत और तरीके आज की हमारी समकालीन चुनौतियों के समाधान में कोई भूमिका निभा सकते हैं? ये एक विचार करने वाला प्रश्न है जिस पर मनन किया जा सकता है।